Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Chaitanya Charitamrita, Satsang class में आप सब लोग का स्वागत है. आज हम लोग Chaitanya Charitamrita का जो तीसरा खंड है अंत लीला का इसका अध्याय है गोपीनाथ पटनायक का उद्धार. तो इस चैप्टर का हम लोग अध्ययन करेंगे. तो गोपीनाथ पटनायक का उद्धार का श्लोक नंबर 35 के आगे हम लोग पढ़ेंगे. हरे कृष्णा. तो इससे पहले हम लोग गोपीनाथ पटनायक कौन था ये जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग बोल रहे हैं कि गोपीनाथ पटनायक का उद्धार कैसे हुआ. तो जिस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जी ने अपना जो लीला करी है उसमें बहुत सारी लीलाएं करी उन्होंने, और उस लीला में उन्होंने क्या किया, अपने जो भक्त थे उस हर भक्त के साथ उन्होंने अलग अलग लीला करी, और हर लीला के साथ जो है चैतन्य महाप्रभु ने कुछ न कुछ शिक्षा प्रदान करी. तो चैतन्य महाप्रभु की लीला चलती थी अपने एसोसिएट्स के साथ, क्योंकि आप जहां जब भी देखेंगे तो चैतन्य महाप्रभु के साथ बहुत सारे एसोसिएट्स हैं, और उस एसोसिएशन के साथ साथ एक एक एसोसिएट के साथ एक एक जो है प्रीतिंग प्रभुपाद जी जैसे बता रहे वाले चैप्टर में भी. तो गोपीनाथ पटनायक का भी जो उद्धार हुआ तो वो भी एक जो है चैतन्य महाप्रभु की लीला थी, और वो लीला के साथ साथ उन्होंने हम लोगों को एक ज्ञान भी प्रदान किया. तो हम लोग देखेंगे कि हर लीला के साथ चैतन्य महाप्रभु की लीला के साथ कुछ ना कुछ जो है हम लोगों को कुछ ना कुछ प्रीचिंग टीचिंग मिलेगी. हरे कृष्ण भाई. तो गोपीनाथ पटनायक कौन है इसमें लिखा हुआ है कि नौवां अध्याय का नाम है गोपीनाथ पटनायक का उद्धार. तो इसमें बताया गया है कि भवानंद राय, जो भवानंद राय थे वो क्या थे, वो चैतन्य महाप्रभु के बहुत ही अच्छे भक्त थे. उनका जो पुत्र था उनके पुत्र का नाम था गोपीनाथ पटनायक. आज संकीर्तन के साथ में क्लास. तो भवानंद राय जो थे उनके पुत्र थे गोपीनाथ पटनायक. और गोपीनाथ पटनायक कौन थे, गोपीनाथ पटनायक जो है एक गवर्नमेंट सर्वेंट थे, मतलब सरकारी नौकरी करते थे. और उनने क्या किया, उनका काम था सब गवर्नमेंट से के लिए कोषागार, मतलब बोलते हैं जिसको, रेवेन्यू कलेक्ट करना. तो उनकी ड्यूटी थी सरकारी नौकरी में कि रेवेन्यू इकट्ठा करना, जैसे होता है ना टैक्स होता है, इनकम टैक्स सेल टैक्स इकट्ठा करना. अभी जैसे जब बहरीन में आ गया वैट, तो एक डिपार्टमेंट बन गया स्पेशल. उसका काम क्या है, उसका काम खाली ये है कि जितना भी गवर्नमेंट ने वैट लगाया है उस वैट को इकट्ठा करना. तो ये इसी तरीके से उनकी भी जिम्मेदारी थी कि जो राजा थे प्रथु महाराज जो उनके राजा का जो ड्यूटी थी उनकी कि राजा के लिए उनको राजा के कोष के लिए उनको धन इकट्ठा करना था. तो ये उनका उनका जो है ड्यूटी थी. तो उन्होंने क्या किया कुछ धन जो है उसमें से जब्त करते थे वो. इसीलिए राजा प्रताप रुद्र के सबसे बड़े पुत्र जो राजा प्रताप रुद्र थे जैसे सब लोग जानते हैं क्योंकि जगन्नाथपुरी के राजा थे, उनके जो सबसे बड़े पुत्र थे बलजना, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये देखा कि ये जो गोपीनाथ पटनायक हैं ये क्या करते हैं कि उन्होंने पैसा तो इकट्ठा किया, किसमें पैसा इकट्ठा किया, सरकारी खजाने में जमा करने के लिए, लेकिन उन्होंने क्या किया इकट्ठा किया खजाने में जमा नहीं किया. तो ये बात जब उनको पता चली तो उन्होंने क्या किया, उनको उनके जो राजा के पुत्र थे उन्होंने उनको मृत्यु दंड दे दिया कि तुमने जो है राजा के साथ चीटिंग किया है, राजा का जो खजाना है उसमें तुमको पैसा इकट्ठा करना चाहिए था लेकिन तुमने क्या किया पैसा इकट्ठा करके अपनी जेब में डाल लिया. तो इसलिए जो है उनको क्या बोला, उनको मृत्यु दंड दे दिया. और गोपीनाथ पटनायक को मारने के लिए क्या बोला उन्होंने कि उनको चांद पर चढ़ा दिया जाए, चांद पर. तो चांद क्या होता है, तो पहले जैसे हम लोग जानते हैं कि फांसी देने का अलग अलग तरीका होता है ना. वो अभी जैसे यहाँ पर बहरीन में फांसी दी जाती है अलग तरीके से दी जाती है, इंडिया में अलग तरीके से दी जाती है, हर जगह का तरीका अलग अलग होता है. अगर आप लोग कभी निकल रोज निकलते होंगे आप यहाँ आधारी पार्क से, तो आधारी पार्क के बाहर तो आप देखेंगे उसमें एक बहुत बड़ा एक हैमर टाइप का है और उसके नीचे किसी को खड़ा कर दिया जाए, वो ऊपर से गिरा दिया जाए, तो ऐसा ही एक बना हुआ है वहां पे, लेकिन कोई ध्यान से उसको देखता नहीं है। तो इसका क्या कारण था कि पब्लिकली जो है फांसी दी जाती थी, पब्लिकली फांसी क्यों दी जाती थी, अभी क्या है इस तरीके से फांसी दी गई। लेकिन पहले फांसी जो है व्हाट्सएप नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, तो सबको पब्लिकली फांसी दी जाती थी। पब्लिकली फांसी क्यों दी जाती थी, उसका कारण यह था कि जो उसने अपराध किया है उस अपराध की वजह से सब लोगों को पता चल और उससे और लोग जो है उसका उसको मालूम चले कि अपराध नहीं करना है। तो चांग क्या होता है, चांग ऐसा होता था एक बहुत ऊंचा चबूतरा होता है और उस चबूतरे पे किसी आदमी को खड़ा कर दिया जाता था और उसके नीचे तलवार लगा दी जाती थी, ऐसे खड़ी होकर तलवार, जैसा प्रभुपाद जी ने यहाँ अनुवाद में लिखा है, और उसके ऊपर से उस आदमी को जो है गिरा दिया जाता था। तो जब उसके ऊपर आदमी गिरेगा तो क्या होगा, तो उसे तलवार के उसके जो है तलवार से उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो ये उस टाइम जो है एक फांसी देने का तरीका था। तो अभी जो है गोपीनाथ पटनायक के साथ क्या हो रहा है, गोपीनाथ पटनायक को अभी मृत्युदंड बोल दिया गया कि मृत्युदंड देना है, लेकिन मृत्युदंड अभी उनको दिया नहीं गया है। अभी क्या बोला गया कि खाली चांद के ऊपर चढ़ा दो, ठीक है। तो चांद के ऊपर चढ़ाने के बाद क्या है, और उसके बाद उनको फिर अगला टाइम उनको क्या करना था कि उनको जो है फिर जो है उसमें से उसके नीचे गिराना था और तलवार से जो है उनकी जो है मृत्यु हो जाती, इस पूरा मृत्यु दंड देना था। तो यहां पे क्या हुआ है कि इसका जो सारांश यह है कि जब भक्त लोगों को पता चला, क्या पता चला कि देखो भवानंद राय चैतन्य महाप्रभु के एसोसिएट है, भक्त है, और उनका जो पुत्र है गोपीनाथ पटनायक उसके साथ क्या हुआ, उसको जो है इतना बड़ा दंड मिलने जा रहा है। वहां का राजा जो है उसको जो है मृत्यु दंड देने जा रहा है, देने क्या जा रहा है, अनाउंस भी कर दिया है मृत्यु दंड और उसको चांग के ऊपर खड़ा भी कर दिया है। तो अगले क्षण जो है उसको मृत्यु दंड मिल जाएगा। तो जो भक्त लोग थे उनके मन में बड़ा असमंजस हुआ कि अरे चैतन्य महाप्रभु के एसोसिएट है और चांग पे चढ़ा दिया है, राजा उनको मृत्यु दंड देने जा रहा है। तो सब लोगों ने क्या किया, वहां पे सब लोग इकट्ठे होके जो भक्त लोग हैं सब लोग चैतन्य महाप्रभु के पास गए और चैतन्य महाप्रभु से बोला कि चैतन्य महाप्रभु आप देखिए आप क्या हो रहा है, आपके सामने हो रहा है कि जो आपके भक्त हैं उनको जो है मृत्यु दंड मिलने जा रहा है। तो सब लोग बहुत चिंतित हो गए। तो चिंतित हो गए तो क्या करा उन्होंने, सीधे चैतन्य महाप्रभु के पास गए और जाके उन्होंने उनसे प्रार्थना करी, चैतन्य महाप्रभु से बोला कि अरे ये क्या होने जा रहा है, आपके सामने आपके राज्य में मतलब राजा के राज्य में और आपके भक्त को जो है ऐसे ऐसे सूली से चढ़ा दिया जा रहा है, उसको मृत्यु दंड दिया जा रहा है, तो ये तो ठीक नहीं है ना। तो जहां जिसकी आस्था होती है वहीं के जाता है ना। तो सब लोग क्या है चैतन्य महाप्रभु के उस टाइम भक्त थे तो उनके पास पहुंच गए। तो इसमें क्या लिखा हुआ हम लोग पढ़ते हैं, तो आचार्य ये अद्वैत का जो है इसमें शुरू के जो इसमें चैप्टर है उसमें यही बताया गया है कि चांग जो है क्या होता है, चांग अपराधी व्यक्ति को जान से मार डालने की एक जो है युक्ति थी और यह एक उठा हुआ चबूतरा होता था जिस पर अपराधी व्यक्ति को खड़ा कर दिया जाता था और इस चबूतरे के नीचे खड़ी तलवारें होती थी, अपराधी व्यक्ति को तलवार के में फेंक दिया जाता था जिससे वह मर जाता था और किसी कारणवश गोपीनाथ पटनायक को मृत्यु दंड दिया गया था इसीलिए उनको चांग पर खड़ा कर दिया गया था। तो भवानंद राय तथा उसका सारा परिवार, अब जो भक्त लोग जो चैतन्य महाप्रभु के पास पहुंचे तो उन्होंने क्या बोला कि जिन पर गोपीनाथ को फेंक दिया जाएगा हे प्रभु यदि आप उनकी रक्षा करें तभी वो बच सकता है क्योंकि अगले ही क्षण जो है उसको मृत्यु दंड मिलने वाला है। तो भवानंद राय तथा उसका जो पूरा परिवार था वो आपके सब सेवक है, तो ये सब भक्त लोग जो है चैतन्य महाप्रभु के पास जाके सब बोल रहे हैं चैतन्य महाप्रभु को कि भवानंद राय उसका सारा परिवार आपका सेवक है इसीलिए यह सर्वथा उपयुक्त होगा कि आप भवानंद राय के पुत्र जो कौन है गोपीनाथ पटनायक उनको बचा लीजिए। और चैतन्य महाप्रभु से पूछा कि राजा उसे दंड क्यों दे रहे हैं, तो चैतन्य महाप्रभु के पास सब जब लोग गए तो उन्होंने पूछा कि ऐसा क्या किया है भाई, गोपीनाथ पटनायक ने ऐसा क्या कर दिया जो राजा उसको जो मृत्यु दंड। तो चैतन्य महाप्रभु को और वह दंडपात नामक स्थान में नौकरी करता था और वह तो ये उसका अपराध हो गया। तो गोपीनाथ पटनायक ने उत्तर दिया और मैं इस तरह का उसने आश्वासन क्या राजकुमार उसने क्या किया था घोड़े बेचने के लिए लाया था कुछ पटनायक उसकी कीमत बहुत कम लगा दी और उसने बोला कि ये जो तुम्हारा पैसा छुपका करना है ये सफिशियंट नहीं है इससे तुम्हारा काम नहीं चलेगा। इसलिए राजा ने उसके मंत्रियों तथा मित्रों के साथ बोला कि उसकी क्या कीमत है घोड़े की उन्होंने बोला कि इस घोड़े की कीमत इतनी नहीं होगी वो कीमत बहुत ज्यादा थी लेकिन राजकुमार ने जो बोल दिया कि ये कीमत इतनी ज्यादा नहीं है कि जिससे तुम्हारा जो तुम्हारे पास जो पैसा रिकवरी निकल रही है उससे पूरा हो पाएगा। तो राजकुमार ने जानबूझ कर घोड़े का मूल जो लगाया जब उसको लगा कि मेरे घोड़े की कीमत बहुत कम कर दी है तो वो बहुत ज्यादा क्रुद्ध हो गए। कौन? गोपीनाथ पटनायक बहुत क्रुद्ध हो गए। तो उस राजकुमार को अपनी गर्दन घुमाने तथा आकाश की ओर ताकने की ओर तथा बार बार उधर देखने की आदत थी। तो जिस राजकुमार ने जो है गोपीनाथ पटनायक को ये दंड दिया था उसको क्या ऐसी आदत थी बार बार इधर मुंडी घुमाने की ऐसे ऊपर करने की ऐसा इसमें लिखा हुआ है। तो गोपीनाथ पटनायक ने क्या करा उस राजकुमार की आलोचना कर दी। उस राजकुमार की आलोचना क्या करी कि जैसे घोड़ा होता है ना इधर उधर गर्दन घुमाता है कि ये राजकुमार भी ऐसा ही है जो घोड़े की तरह गर्दन ऊपर नीचे कर रहा है। तो उसमें लिखा है गोपीनाथ पटनायक ने उस राजकुमार की आलोचना की और राजकुमार को तनिक भी भयभीत नहीं था क्योंकि राजा उस पर अत्यंत दयालु रहता था। तो इस तरीके से गोपीनाथ पटनायक ने कहा कि मेरे घोड़े कभी अपनी गर्दन नहीं मोड़ते हैं या ऊपर नहीं देखते हैं इसलिए उनका मूल्य कम नहीं होना चाहिए। तो गोपीनाथ पटनायक ने क्या किया उसमें जो टॉन्ट किया ऐसा डायरेक्ट नहीं बोला उसने बोला कि मेरे जो घोड़े हैं वो ऐसे दाएं बाएं नहीं देखते ऊपर नीचे नहीं देखते हैं इनकी कीमत इतनी कम नहीं होनी चाहिए। कहने का क्या तात्पर्य है कि उसने राजकुमार के सामने ही जो है उसकी मजाक उड़ा दी। उसने बोला राजकुमार ने बोला कि इन घोड़े की कीमत बहुत कम है तो उसको बुरा लगा गोपीनाथ पटनायक को। तो गोपीनाथ पटनायक ने उसको डायरेक्ट नहीं बोला कि तुम गलत कर रहे हो उसको बोला कि देखो मेरे घोड़े की कीमत इतनी कम नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये गर्दन इधर उधर नहीं घुमाते ऊपर नीचे नहीं करते। तो इससे क्या हुआ राजकुमार जो है वो और ज्यादा क्रोधित हो गया और अत्यंत क्रोध हो गया और राजा के पास जाकर उसने गोपीनाथ पटनायक के विरुद्ध और ज्यादा झूठे झूठे आरोप लगा दिए और यह गोपीनाथ पटनायक बकाया वापस लौटाना नहीं चाहता ऐसा था राजा को उसने बोला और आदेश जारी कर दिया कि उसको चांद पर चढ़ाकर उससे धन वसूल कर दिया जाए। तो राजा ने उत्तर दिया कि तुम जिस उपाय से को सर्वश्रेष्ठ समझो उसी उपाय से तुम उससे धन वसूलो और इससे अगर तुमको चांद पे चढ़ाना है तो चांद पे चढ़ा दो जो तुमको करना है तुम करो जो भी तुमको रास्ता हो उससे तुम उसका धन वसूल करो। तो राजकुमार वापस चले गए और उन्होंने गोपीनाथ पटनायक को चांद पर चढ़ा दिया और उसको नीचे फेंका जाना था। तो ये सब जो है क्या है ये चैतन्य महाप्रभु के जो एसोसिएट थे जो भक्त लोग थे उन सब ने जाके वहां पे उसे चैतन्य महाप्रभु को बता रहे कि ऐसा ऐसा हुआ। तो चैतन्य महाप्रभु ने जब ये सब सुना तो उन्होंने क्रोध से उत्तर दिया क्या अब देखिए महाप्रभु की लीला देखिए महाप्रभु ने क्या उत्तर दिया कि गोपीनाथ पटनायक राजा का धन नहीं लौटाना चाहता तो फिर उसे दंडित करने में राजा का क्या दोष है। तो चैतन्य महाप्रभु ने वो नहीं बोला जो मेरा भक्त है तुम जाओ उसको बचा लो ऐसे कर दो वैसे कर दो उन्होंने बोला क्या उन्होंने बोला सिद्धांत क्या है उसका काम था पैसा इकट्ठा करना उसने पैसा इकट्ठा नहीं किया राजा के धन में गड़बड़ किया तो अगर राजा ने उसको जो है क्या कर रहा है राजा उसको दंड दे रहा है तो उसमें क्या गलत कर रहा है सही तो कर रहा है वो। तो गोपीनाथ पटनायक सरकार की ओर से धन संग्रह करने का भार लिए हुए हैं किंतु वह उसका दुरुपयोग करता रहा वह राजा से न डरे और जो है उसका धन लुटाता रहा। तो चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ ऐसा बोला, तो यहाँ देखिए चैतन्य महाप्रभु का की प्रीचिंग कैसे चल रही है। और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला कि दूसरा उन्होंने क्या बोला कि मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, यहाँ ये जो जगन्नाथपुरी है यहाँ का स्थान में यहाँ का राजा कौन है, जगन्नाथ, जगत के नाथ कौन है, जगन्नाथ है। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि तुम लोग क्या करो, तुम लोग जाके मेरे पास क्यों आए हो, तुम लोग जगन्नाथ जी के पास जाओ और जगन्नाथ जी के पास जाके ये प्रार्थना करो, प्रेयर करो कि किस तरीके से जो है ये गोपीनाथ पटनायक है ये किस प्रकार से बच सकते हैं। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि स्वरूप दामोदर जो है वो चैतन्य महाप्रभु के सेक्रेटरी थे और सारे महा जो भक्त थे वो सब महाप्रभु से विनती करने लगे कि किस प्रकार से जो है आप इनको बचाइए। और वहां पे ये बात चल रही थी कि रामानंद राय के परिवार के सारे सदस्य आपके नित्य दास हैं, अब वे संकट में हैं, आपके लिए ये जो है इस तरीके से करना ठीक नहीं है। तो इस तरह का वहां संवाद चल रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु और ज्यादा क्रुद्ध हो गए, वो बोले कि तुम लोग मुझे आज्ञा देना चाहते हो कि मैं राजा के पास जाऊं। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला, तुम मेरे पास क्यों आए हो, मेरे से तुम लोग क्या चाहते हो कि एक आदमी ने गलत काम किया हो और मैं वहां जाऊं और राजा को बोलूं कि इसने गलत काम किया है इसको सजा ना दे। तो चैतन्य महाप्रभु ने ये बोला, तुम लोगों का मत है कि मैं राजा के महल में जाऊं और उससे धन मांगने के लिए अपना वस्त्र फैलाऊं, मतलब धन मांगू या उससे याचना करूं कि भाई मेरे को मेरा जो भक्त है उसको छोड़ दो। निसंदेह सन्यासी या ब्राह्मण 5 गंडे तक मांग सकता है, किंतु क्योंकि उसे 2 लाख कौड़ियों की अनुपयुक्त राशि दी जाए। तब एक अन्य व्यक्ति यह समाचार लेके आया कि गोपीनाथ को तलवारों की नोकों पर फेंकने जाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। यह समाचार सुनकर सारे भक्तों ने फिर से महाप्रभु से याचना की, किंतु महाप्रभु ने उत्तर दिया, मैं भिक्षुक हूं, इसके विषय में मैं कुछ भी करना मेरे लिए असंभव है। इसलिए यदि तुम लोग उसे बचाना चाहते हो तो तुम सब लोग को मिलकर जगन्नाथ जी के चरण कमल की प्रार्थना करनी चाहिए। जगन्नाथ जी भगवान है, उनमें सारी शक्तियां हैं, इसलिए वे स्वतंत्र होकर कर्म कर सकते हैं और जिसे चाहे बना सकते हैं और जिसको चाहे बिगाड़ सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने इस प्रकार से उत्तर दिया तो हरिचंदन पात्र नामक एक अधिकारी ने राजा के पास जाकर यह कहा। तो अब जो क्या हुआ, वहां पे जो चैतन्य महाप्रभु ने बोला अब वहां से कोई आदमी खबर लेके सीधे राजा के पास पहुंचा और उसने कहा कि आखिर गोपीनाथ पटनायक आपका आज्ञाकारी सेवक है। तो अब जो है राजा के पास बात पहुंच गई और उनको क्या बताया जा रहा है, राजा को क्या कहा जा रहा है कि गोपीनाथ पटनायक आप ही का कैशियर था ना, आपका आपके लिए धन इकट्ठा करता था और हमेशा वो आज्ञाकारी था आपका, ईमानदारी से आपके साथ काम करता था, अभी तक अभी उसने गड़बड़ किया है। तो एक सेवक को प्राण दंड देना एक अच्छी बात नहीं, उचित बात नहीं है। उसका इतना ही दोष है कि उस पर सरकार का कुछ बकाया है, ठीक है ना, वो बोल रहा है ना कि मैं दे दूंगा, और किंतु यदि वह मार डाला जाता है तो इससे क्या लाभ होगा। तो अब जो है राजा को लोग जाके समझा रहे हैं कि अगर अभी उसके पास बकाया है कुछ नहीं दे पा रहा है और अगर आप उसको मार डाल देंगे तो क्या होगा, उससे बकाया तो वसूल नहीं होने वाला है ना, सरकार तो घाटे में ही रहेगी और क्योंकि तब तक उससे जब तक धन नहीं मिल जाएगा तब तक वो घाटे में ही रहेगी। तो अच्छा क्या होगा कि घोड़ों को उचित मूल्य पर ले लिया जाए और शेष राशि उससे धीरे धीरे रिकवरी मतलब चुकता कर ली जाए, आप उसे व्यर्थ में क्यों प्राण दंड दे रहे हैं। तो राजा ने आश्चर्यपूर्वक उत्तर दिया कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता, उसके प्राण क्यों लिए जा रहे हैं मुझे नहीं मालूम, मैं तो केवल उससे धन चाहता हूं, क्योंकि उसने तो राजकुमार को बोला था ना, राजकुमार ने बोला था कि उसको मृत्यु दंड दे दिया जाए, वहां जाओ और सारा जोड़ तोड़ करके लो और मैं तो केवल धन चाहता हूं और उसके प्राण नहीं चाहता हूं, तो ऐसा जो है राजा ने बोला। तब हरिचंदन लौट कर आया और उसने राजकुमार को राजा की इच्छा बताई। गोपीनाथ पटनायक को तुरंत ही चांग से उतार लिया गया क्योंकि राजा ने बोला ऐसा। तब उसे बताया गया कि राजा ने उससे बकाया की मांग की है और पूछा है कि वह चुकता करने के लिए कौन सा उपाय करे। उसने उत्तर दिया, कृपया उचित मूल्य द्वारा मेरे घोड़े को खरीद लीजिए, मैं धीरे धीरे शेष राशि चुकता कर दूंगा, किंतु आप बिना विचार किए मेरे प्राण लेने जा रहे हैं तो भला मैं क्या कर सकता हूं। तब सरकार ने उचित मूल्य पर सारे घोड़े ले लिए और शेष राशि चुकाने के लिए समय निर्धारित कर दिया और गोपीनाथ पटनायक को रिहा कर दिया गया। तो श्रील चैतन्य महाप्रभु ने संदेशवाहक से पूछा कि जब गोपीनाथ को बंदी बनाया गया और वहां लाया गया तो जो वाणीनाथ उसके पिता थे वो क्या कर रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु की देखिए लीला अभी तक ये लीला चल रही है। उन्होंने भी प्रश्न पूछा कि जब उसको जो है इस तरह से मृत्यु दंड दे दिया गया तो जो है जो वाणीनाथ है वो क्या कर रहे थे, तो संदेशवाहक ने क्या बताया, संदेशवाहक ने बोला कि जो क्या कहते हैं वाणीनाथ थे वो क्या कर रहे थे, वो जो है केवल निर्भय होकर, मतलब उनको किसी चीज पर डर नहीं था, उनका उनका विश्वास किस चीज पर था, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे। तो वो क्या कर रहे थे, तो चैतन्य महाप्रभु को मालूम था, लेकिन वो पूछ रहे कि जब उसको मृत्यु दंड दिया गया तो क्या हो रहा था वहां पे, तो इसमें लिखा हुआ है कि वह निर्भय होकर लगातार हरे कृष्णा महामंत्र का कीर्तन कर रहा था। और कैसे कर रहा था, उसमें माला तो नहीं थी, वो कैसे कर रहा था, वो जो हस्त माला जो होती है उसने दोनों हाथों की उंगलियों पर तब तक गिनती की जब तक वह 1000 बार जब पूरा नहीं कर चुका था। और उसने वो क्या करता था, हाथ पे पहले माला जपता था, हरे मंत्र जपता था, और हाथ का जब माला पूरा हो गया ना तो क्या करेगा, तो वो एक अपने शरीर पे एक निशान बना देता था, और 1000 बार जब पूरा कर चुका था तो वह अपने शरीर पर एक चिन्ह बना लेता था। तो यह समाचार सुनकर महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न हुए। भला अपने भक्त पर महाप्रभु की कृपा को कौन समझ सकता है। तो ये देखिए ये क्या है, चैप्टर है गोपीनाथ पटनायक का उद्धार। तो किस प्रकार से वो सूली पे चढ़ गया था और उसको बिल्कुल जो है वहां पे नीचे गिराया जाने वाला था, तो महाप्रभु कैसे किस प्रकार से, जैसा हम लोगों ने शुरू में चर्चा किया था, किस प्रकार से महाप्रभु प्रीचिंग करते थे अपने एक एक अपने एसोसिएट के साथ, अपने एक एक सहयोगी के साथ, वो एक एक जो है प्रीचिंग करते थे। तो यहां देखिए किस प्रकार से उन्होंने लीला करी, और लीला करके वो महाप्रभु क्या बताना चाहते थे कि देखो जो महामंत्र है उसकी पावर कितनी ज्यादा है, कैसे महाप्रभु ने महामंत्र जपने वाले का कैसे उद्धार किया। तो उसी समय काशी मिश्रा जो चैतन्य महाप्रभु के आवास पर आए थे वो महाप्रभु से अत्यंत बातें करने लगे। तो महाप्रभु ने कहा कि अब मैं यहां और अधिक नहीं ठहर सकता। साथ में महाप्रभु ने यह भी बोला कि तुम लोग क्या है अभी मेरे को परेशान कर रहे हो, क्या बोल रहे हो कि अभी उसको सूली पे चढ़ा दिया गया है, ठीक है उसको बचाओ, अभी क्या है जगन्नाथपुरी में कुछ और समस्या आएगी तो उसके लिए मेरे पास आओगे। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला कि मैं यहां ज्यादा नहीं रुकूंगा, मैं यहां से अलहरनाथ जो है वहां जाना चाहता हूं, और क्योंकि यहां पर अनेक महाप्रभु क्या बोला यहां पर अनेक उपद्रव होते हैं और मैं तनिक भी यहां विश्राम नहीं कर पाता हूं, तुम लोग कभी ये उपद्रव करते हो ऐसा करते हो तो मैं यहां नहीं रुकना चाहता हूं। तो राजा का इसमें क्या दोष है, वह तो सरकार का धन चाहता है किंतु जब वे सरकार को जो देना है वह चुकता नहीं कर पाया तो दंडित दे रहे थे, उसे मेरे उसको छुड़वाने के लिए मेरे पास आने का क्या आवश्यकता थी। तो तब राजा ने गोपीनाथ पटनायक को चांग पर चढ़ाया तो संदेशवाहक मुझे इस घटना के विषय में बता रहा है। तो यहाँ पर महाप्रभु क्या बता रहे हैं कि तुम लोग कुछ ना कुछ उत्पात करते रहते हो और उसका बाद तुम जो है मेरे पास लेके आते हो कुछ ना कुछ समाचार, तो मैं यहाँ पे वहां पर डिस्टर्ब होता हूँ, तो मैं यहाँ नहीं रहना चाहता हूँ, मैं एक भिक्षुक सन्यासी के रूप में एकांत स्थान पर अकेला रहना चाहता हूँ, किन्तु ये लोग मुझे अपना दुख बताने के लिए चले आते हैं और मुझे क्षुब्ध कर देते हैं। तो आज जगन्नाथ जी ने एक बार फिर मृत्यु दंड से अपने भक्त को बचा लिया, किंतु यदि कल वह पुनः खजाने को बकाये को चुकता कर नहीं कर पाता है तो उसे कौन संरक्षण देगा। तो देखिए दूसरी प्रीचिंग दे रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, दूसरी बात बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि एक बार उसने गलती किया तो भगवान ने उसको बचा लिया, लेकिन अगर वो दोबारा ऐसा कुछ करने लगा, दोबारा वो पैसा इकट्ठा किया और उसने नहीं दिया तो क्या होगा, तो फिर जो फिर राजा उसके पीछे जाएगा तो फिर जो है वो कब भगवान कब तक बचाएंगे। तो ये देखिए मैं आज पढ़ रहा था कितना बढ़िया प्रिंसिपल है। तो प्रभुपाद जी ने क्या बताया, प्रभुपाद जी ने बताया कि भगवत गीता में ये लिखा हुआ है कि भगवान निश्चित ही क्या करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, किसकी रक्षा करते हैं, जो संयोगवश पाप करता है, मतलब एक पाप होता है जानकर पाप करना और एक पाप होता है अनजाने में पाप करना, संयोगवश मतलब कुछ ऐसा संयोग बन गया कि उसने जो है कोई पाप कर दिया, अपराध कर दिया, लेकिन क्या होता है एक प्रॉब्लम जो होती है आदमी ने कुछ गलत किया फिर गलत किया फिर दोबारा गलत किया। तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु दूसरा प्रश्न ऐसे भक्त को भगवान नहीं बचाते। अब प्रभुपाद यहाँ पे भगवत गीता का श्लोक बता रहे हैं कि कौन सा श्लोक बता रहे हैं, यहाँ पे 9वें अध्याय का 30वां 31वां बता रहे हैं कि अपि चेत दुराचारो भजते माम अन्य भाग साधु रेवा स मंतव्य सम्यक अंधविस्तो हिसा।
तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस श्लोक को और दूसरा भी है, क्षेत्र भवती धर्मात्मा शाश्वत निगच्छति कौन्ते यहाँ प्रति जाना ही नामे भक्त्या प्रशन्ति। तो हम लोग इस श्लोक को बहुत गलत समझ रहे थे। क्या मतलब क्या क्या हमने ऐसा मतलब निकाला ठीक है ना, उसको तो कहते हैं जो माफ कर ही देंगे और जो है वो बच जाएगा। लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं और ये जो हुआ है चैतन्य महाप्रभु का जो लीला हुआ है गोपीनाथ पटनायक का, उसमें भी वही चैतन्य महाप्रभु भी बता रहे हैं कि भगवान जो है तो क्या है वो समस्या है, वो प्रॉब्लम है, फिर भगवान उसका साथ नहीं देते।
इसमें लिखा हुआ है यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, ये भगवद गीता का श्लोक में लिखा है, इसका अनुवाद है, किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि वह अपने संकल्प से अधिक नहीं होता है। तो जो भगवान की भक्ति कर रहा है ठीक है ना, उससे अगर कोई जघन्य कर्म हो जाता है तो भी उसको भक्त मानना चाहिए और उस पर कोई ऐसा पाप नहीं होता ऐसा मानना चाहिए। वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त करता है, ऐसा अनुवाद है इसका। लेकिन हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरा भक्त का कभी भी विनाश नहीं होगा। किंतु यदि कोई तथाकथित भक्त, यहाँ प्रभुपाद ये बता रहे हैं, लेकिन कोई तथाकथित भक्त जानबूझकर इस आशा से निरंतर पाप करता है कि कृष्ण उसका संरक्षण प्रदान करते हैं तो कृष्ण उसकी रक्षा नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल जो है हम लोग जो है ना अपनी अपने अपने लिए प्रिंसिपल को तोड़ मरोड़ के रख लेते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं, अरे कोई बात नहीं है, हम लोग तो भक्त हैं, गलती पे गलती करते चले जाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि भगवान ने भगवद गीता में बोला है ना कि भक्तों का कभी नाश नहीं होगा। और क्या बात है, अगर एक बार गलती हो गई तो हो गई, क्या हो गया, ठीक है ना। हम तो साधु हैं, भगवान ने बोला है, ठीक है ना। तो इस तरह का हम लोग जो है ज्यादातर जो है इस तरह का हम लोग टीचिंग अपने मतलब के लिए निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ प्रभुपाद बहुत क्लैरिफाई कर रहे हैं। और यही चैतन्य महाप्रभु ने भी बोला कि एक बार उसमें जो है जो राजा का पैसा है वो पूरा नहीं हुआ, अगर तो यहाँ पर लिखते हैं प्रभुपाद जी कि कृष्ण उसको संरक्षण प्रदान करते हैं जिससे अनजाने में गलती होती है और वो दोबारा उसको रिपीट नहीं करता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि काली के राखव यदि ना दीबे राजधन, मतलब आज तो जगन्नाथ जी ने गोपीनाथ पटनायक को राजा द्वारा मारे जाने से बचा लिया, किंतु यदि वह फिर से पाप करता है तो उसे कौन संरक्षण प्रदान करेगा। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ऐसे समस्त मूर्ख भक्तों को आगाह करते हैं। तो प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं कि वो बोले मूर्ख भक्त को ऐसा आगाह करते हैं कि यदि वे इसी तरह पाप करते रहे तो जगन्नाथ जी उनकी रक्षा नहीं करेंगे। तो ये जो लीला करी है महाप्रभु ने, उसमें दो बातें महाप्रभु ने बताई, दो बातें ही बताई है कि वो क्या कर रहे हैं। वो ये जैसे चैतन्य महाप्रभु के पास गए तो भक्त उन्होंने ये नहीं बोला कि जो है ठीक है मैं जाके राजा से बोल दूंगा, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने देखा कि यहाँ तो मेरे से भी ज्यादा सुप्रीम पावर जगन्नाथ भगवान जी हैं, तो उनके पास जाओ। और दूसरा उन्होंने क्या बोला कि मैं यहाँ से इसलिए जा रहा हूँ, बार बार करते हैं ऐसे, क्या बोलते हैं, एक कहावत है कि जो करे गलती ठीक है ना, गलती से एक है उसको शैतान कहते हैं, ठीक है ना, करे गलती फिर गलती और फिर गलती उसे शैतान कहते हैं। तो करे गलती उसको इंसान कहते हैं, करे गलती और फिर गलती उसको शैतान कहते हैं, है ना, कहते हैं ना शैतान है बार बार गलती करे, करे गलती और फिर गलती और फिर गलती उसको हैवान कहते हैं, और करे गलती और फिर गलती और फिर गलती और गलती में गलती उसको पाकिस्तान कहते हैं, हरे कृष्ण। तो ऐसा एक कहावत है, लेकिन इसका हम लोग को यहाँ पे ये सोचना चाहिए कि बार बार गलती करने पे भी भगवान जो है नहीं बचाते, इस तरह का जो है इसमें ये बताया गया। प्रभु जी ने बोला कि क्लास के बाद कीर्तन में हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे, हरे कृष्ण। हम लोग ये पढ़ लेते हैं शिक्षास्त्रकम, चैतन्य महाप्रभु की जय।